नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव खत्म होने और नई सरकार के सत्ता संभाल लेने के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग को गठित करने का आग्रह किया है। नया वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन में संभावित संशोधन को लेकर रिपोर्ट बनाएगा और अपनी सिफारिशें करेगा। भारतीय रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है। इसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्र वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की गई है। इसके गठन का 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से 10 साल के अंतराल के साथ अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। केंद्र आमतौर पर 2 अलग-अलग वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के बीच 10 साल का अंतराल रखता है, लेकिन केंद्र अगले वेतन आयोग के गठन के मामले में अब तक चुप रहा है। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और मोदी 3.0 सत्ता में हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अपने पत्र में AIRF ने सरकार से कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1 जनवरी 2016 से अमल किया गया था। हालांकि जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग को खारिज कर दिया गया। 26,000 रुपये के न्यूनतम वेतन की गणना ILC मानदंडों और डॉक्टर एक्रोयर्ड फॉर्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई थी। संघ ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि उसने CPC के समक्ष ये बात भी रखी है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अब भी कम है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वें CPC ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये की सिफारिश की। न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा के अनुसार ये पारिश्रमिक की वो न्यूनतम राशि है जिसे नियोक्ता को एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए वेतन भोगियों को देना आवश्यक है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन NPS में निवेश करते समय आपको एक अहम फैसला करना पड़ता है जिसका सही होना बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए ज़रूरी है। ये फैसला है NPS में निवेश के लिए उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का। ये 2 विकल्प हैं ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। इनमें से एक का चुनाव करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में ऑटो चॉइस के तहत आपकी उम्र के हिसाब से आपके निवेश को इक्विटी और डेट में अपने आप को एलोकेट यानी आवंटित कर दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है NPS आपके इक्विटी एक्सपोजर को कम करके डेट में निवेश बढ़ाता रहता है। ये विकल्प उन निवेशकों के लिए अच्छा है जिन्हें निवेश के तकनीकी पहलुओं को समझने में दिक्कत होती है या जिनके पास समय की कमी है। NPS के ऑटो चॉइस में भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से कई अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। NPS में निवेशकों को ऑटो चॉइस के तहत एक विकल्प एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड का मिलता है। इसमें 35 साल की उम्र तक फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है। इसके बाद हर साल इक्विटी का हिस्सा घटता जाता है और डेट का हिस्सा बढ़ता जाता है। निवेशक की उम्र 55 साल होने तक इक्विटी का हिस्सा घटकर 15% रह जाता है। 2, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। NPS में निवेशकों को ऑटो चॉइस के तहत दूसरा विकल्प मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड का मिलता है। दरअसल ये स्कीम का डिफॉल्ट विकल्प है। इसमें 35 साल की उम्र तक 50% निवेश इक्विटी में और 50% डेट में होता है। निवेशक की उम्र 55 साल होने तक इक्विटी का हिस्सा घटकर 10% रह जाता है। कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। NPS में निवेशकों को ऑटो चॉइस के तहत तीसरा विकल्प कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड का मिलता है। इसमें इन्वेस्टर की उम्र 35 साल होने तक 25% निवेश इक्विटी में होता है। इसके बाद उम्र के साथ साथ इक्विटी का हिस्सा घटता जाता है। निवेशक की उम्र 55 साल होने तक इक्विटी का हिस्सा घटकर 5% रह जाता है। NPS के ऑटो चॉइस में उम्र के हिसाब से एलोकेशन बनाए रखने के लिए आपके निवेश को हर साल आपके जन्मदिन पर रीबैलेंस किया जाता है। ऐसा 2 वजहों से किया जाता है। एक तो आपकी बढ़ती उम्र के हिसाब से ज़रूरी होने पर इक्विटी एलोकेशन कम किया जाता है। दूसरे, अगर इक्विटी कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से आपके फंड में इक्विटी और डेट का रेशो बदल जाता है तो इसे वापस सही अनुपात में लाने के लिए आवश्यक बदलाव किया जाता है। एक्टिव चॉइस के तहत निवेशक अपने फंड के लिए इक्विटी और डेट एलोकेशन यानी आवंटन का चुनाव खुद कर सकते हैं। इस विकल्प के तहत आप अपने निवेश का अधिकतम 75% इक्विटी में और बाकी डेट में लगा सकते हैं। डेट में निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप इसमें 100% निवेश कर सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।